ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग श्लोक संख्या 3 बोलिए। येन च वाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमेरपि जनः सद्यो वियोज्येत किमुतान्यर्धनादिभि। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमेरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यर्धनादिभि। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमेरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यर्धनादिभि।
शब्दार्थ बोलिए।
येन ऐसे काल द्वारा खींचा गया च तथा एवं निश्चय ही अभिपन्नः पकड़ में या प्रभाव में अयम यह प्राण है जीवन से प्रिय समय है जो सबों को अत्यंत प्रिय है। अपि यद्यपि जनः व्यक्ति सद्यः शीघ्र वियुज्येत त्याग दे किम उत अन्य अन्य वस्तु के विषय में क्या कहा जाए। धन आदि भी यथा धन सम्मान संतान धरती तथा धर। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जो भी परम काल के प्रभाव में रहता है उसे अपना सर्वोपरि प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन सम्मान संतान भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की। एक महान भारतीय वैज्ञानिक जो आयोजना बनाने के कार्य में व्यस्त रहता था जब योजना आयोग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था तो सहसा अजेय काल का बुलावा आ गया और उसे अपना जीवन पत्नी बच्चे घर धरती धन आदि सब कुछ त्यागना पड़ा। आप लोग ध्यान से सुनिए प्रभु जी क्या कह रहे हैं। भारत में राजनीतिक उथल पुथल तथा पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान में इसके विभाजन के समय अनेक धनी तथा प्रभावशाली भारतीयों को काल के वश में आकर अपना जीवन संपत्ति तथा सम्मान सभी को समर्पित कर देना पड़ा। सारे विश्व में सारे ब्रह्मांड में इस तरह के सैकड़ों हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जो सारे काल के प्रभाव के कारण हैं। अति निष्कर्ष यह निकला कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा जीव नहीं जो काल को जीत सके। अनेक कवियों ने काल के प्रभाव के विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी हैं। प्रभु जी कह रहे हैं बहुत से कवियों ने काल के प्रभाव के विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी है। वो क्यों विलाप कर रहे हैं काल के प्रभाव के विषय में? क्योंकि उनकी योजनाएं होती हैं भोगने की, उनकी योजनाएं होती हैं भोगने की इस संसार में, और काल जो है ध्वस्त कर देता है उनकी भोगने की योजनाएं, उनका जीवन ही समाप्त कर देता है ना। तो कवियों ने बहुत सी विलाप की कविताएं लिखी हैं, है ना। निराशा के काल के द्वारा वो निराश हो जाते हैं। लेकिन भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं कि पहले से ही निराश रहो और फिर बाद में निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्तु विकृतुरा, पहले से ही निराश रहो तो आपको फिर बाद में निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दिल नहीं टूटेगा क्योंकि आप आशा ही नहीं करते, है कि नहीं। निराशा ही परम सुख है। जब भी आजकल नारा क्या है, आशा ही जीवन है, आशा करते हैं तो फिर जो है निराशा प्राप्त होती है। आशा ही अज्ञान है, आप आशा क्यों करते हैं जीने की? जब देख रहे हैं कि मृत्यु हमेशा सिर में है और लोगों की मृत्यु हो रही है, और यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग जो है जीने की आशा करते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य है। यमराज जी ने पूछा, यक्ष ने, जो यमराज थे यक्ष के रूप में, युधिष्ठिर से पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो क्या कहा कि लोग आशा करते हैं जीने की। अहं यहं भूतानि गच्छन्ति हि यमालयं। अभी प्रभुपाद का तात्पर्य चल रहा है तो मैं बीच में चर्चा कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जो लिख रहे हैं कि कवियों ने जो है निराशा की कविताएं लिखी हैं क्योंकि लोग आशा करते हैं। जीवन कितना आनंददायक है, जिंदगी कितनी हसीन है। एक फिल्म का नाम है, हम बचपन में देखते, एक फिल्म का नाम था जिंदगी कितनी हसीन है। तो फिर दिल टूटता है जब देखते हैं कि ये है, और यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। दृष्टि ने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, क्या अहं यहं भूतानि गच्छन्ति हि यमालयं। यमराज के घर जा रहे हैं रोज रोज लोग, सब लोग देख रहे हैं, और शेषा छात्रा मिच्छन्ति, और जो बचे हुए हैं वो आशा करते हैं जीने की। किम आश्चर्य मदापरम, इससे बड़ा क्या आश्चर्य, कितना बड़ा आश्चर्य। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने कहा निराश होकर के विगत करा युद्ध करो, चिंता रहित होकर, फिर कोई चिंता नहीं। जब आशा करते हैं तो फिर आपको ज्वर पैदा होता है, चिंता का ज्वर पैदा होता है, चिंता में चलते हैं। अगर आशा नहीं होते हैं तो फिर आपकी कोई चिंता नहीं रहती। निराश और निश्चिंत होकर युद्ध करो। और श्रीमद् भागवत में भी भगवत गीता का ही विस्तार है। श्रीमद् भागवत सिंह लवेश ने कहा निराश्यम परमम सुखम, निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। तो ये ज्ञान है, निराश होना ज्ञान है, तो आशा करना अज्ञान है। एक भौतिक संसार में जीने की आशा करना, सुख की आशा करना, जब दुख का और मृत्यु का स्थान है तो यहाँ आप आशा करते हैं सुख की और जीवन की, तो यह अज्ञान है। आशा करो, किससे आशा करो? भगवान से। बस आशा करते हैं कभी न कभी कृपा करेंगे जरूर, तो वो आशा अज्ञान है। ये ज्ञान है जो भगवान से आशा कर सकते हो कि हाँ वो जो है जरूर शरण देंगे, अपनी शरण में रखेंगे जरूर, एक ना एक दिन जरूर कृपा करेंगे। तो भक्त आशा करता है भगवान से। इस संसार से आशा क्यों करते हो? इस संसार में जब धोखा ही धोखा है, मृत्यु ही मृत्यु है, दुख ही दुख है, तो इसमें जो ना आप क्यों आशा करते हो? तो सीखी तो जो कवि हैं, इन्होंने कविताएं जो लिखी हैं, तो इस अज्ञान पर आधारित है उनकी कविताएं। तो सिंगला विषय ने कहा है आशा ही परमम दुखम निराश्यम परमम सुखम। आशा ही सबसे बड़ा दुख है क्योंकि तो अज्ञान है, और निराशा ही क्या सबसे बड़ा सुख है। अच्छा आगे प्रभुपाद लिखते हैं अतएव अनेक कवियों ने काल के प्रभाव के विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी हैं। काल के प्रभाव से ही ब्रह्मांडों में अनेक विनाश लीलाएं होती रही हैं और कोई भी उन्हें किसी साधन से रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि हमारे नैतिक जीवन में ऐसी अनेक बातें घटती रहती हैं जिनमें हमारा बस नहीं चलता और हमें उन्हें सहन करना पड़ता है, उनका कोई उपचार नहीं होता। यही काल का परिणाम है। यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो ये जो श्लोक है ये काल की चर्चा इसमें हो रही है। सबसे बलवान इस भौतिक संसार में कौन है? काल है। सबसे ज्यादा बलवान काल है। मृत्यु सर्वहरस्ता हम, भगवान गीता में कहते हैं मृत्यु सर्वहरस्ता हम, मैं मृत्यु हूँ, सब कुछ हरण कर लेता हूँ, सब कुछ छीन लेता हूँ। सबसे ज्यादा बलवान काल है। अब इसमें दो बातों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप जो कथा का संबंध है वो जानते हैं, फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ। ये जो श्लोक है कौन कह रहा है? विदुर जी कह रहे हैं, धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र जो है अज्ञान में है, अपने प्राणों की रक्षा कर रहा है, अपने प्राणों को पाल रहा है। और वो क्या कह रहे हैं विदुर जी धृतराष्ट्र से? ये सेवाभिपन्नोयम, जिसके द्वारा पकड़ा हुआ अभिपन्न, एक तो प्रपन्न शब्द होता है, दूसरा अभिपन्न। प्रपन्न का मतलब होता है जो इच्छा से कोई व्यक्ति शरण ले तो प्रपन्न कहलाता है, और अभिपन्न का मतलब होता है जो बलपूर्वक पकड़ा जाए। तो मैं भगवान के प्रपन्न हूँ, मतलब अपनी इच्छा से भगवान की शरण ले रहा हूँ। तो अगर आप भगवान के प्रति प्रपन्न होते हैं तब तो जो है ना कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भगवान के प्रपन्न नहीं होते हैं तो काल के द्वारा आप अभिपन्न होते हैं, काल बलपूर्वक पकड़ता है कि नहीं? तो यहाँ शब्द है अभिपन्न। आप इच्छा से शरण नहीं लेते हैं भगवान की, तो काल के रूप में भगवान आपको बलपूर्वक क्या करते हैं? दबोच लेते हैं। यानी बड़े अच्छे शब्द हैं, ये बड़े अच्छे शब्द हैं। अभिपन्ना का शब्द आप लिखा है पकड़ में, काल की पकड़ में। ये न चेवा भी पन्न हो जाए, जिसके द्वारा पकड़ा हुआ यह है। मतलब व्यक्ति जो आशा करता है जीने की, सुख की आशा करता है, है? वो क्या करता है? प्राण है प्रिय तमाम प्रिय, सबसे प्रिय, सबसे अधिक जो प्रिय प्राण है उनसे भी सद्यो तुरंत ही बिछड़ जाता है, वियोज्यत है, वियोज्यत है, वियोज्यत है, तुरंत ही अलग हो जाता है, अपने प्राणों से भी बिछड़ जाता है तुरंत। फिर किम अन्य धन आदि, धन आदि के बाद क्या कहेगा? अपने प्राणों से भी वो वियुक्त हो जाता है। तो प्रियतम है प्राण, यह शब्द है प्रियतम, प्राण के लिए प्रियतम। तो आप जानते तीन शब्द हैं, एक तो प्रिय और दूसरा प्रियतर और तीसरा प्रियतम। तो प्रियतम तो प्राणी है, सबसे ज्यादा प्रियतम तो प्राणी है, और किम अन्य, अन्य मतलब दूसरी चीजें हैं वो प्रिय हैं, धन आदि भी, धन आदि चीजें प्रिय हैं। इसमें धन आदि में प्रभुपाद जी क्या क्या लिखते हैं? क्या क्या है? धन, सम्मान और संतान और भूमि और घर, ये प्रिय है। प्रिय या प्रियतर, किसी को धन प्रिय होता है और उससे ज्यादा सम्मान प्रिय होता है तो सम्मान प्रियतर हो गया है? और किसी को उससे ज्यादा संतान प्रिय होती है तो वो और ज्यादा प्रियतर हो गई। किसी को उससे ज्यादा भूमि प्रिय है या घर प्रिय है, तो किसी को कोई चीज प्रिय है और कोई चीज प्रियतर है, वो हो सकता है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रिय और प्रियतर हो सकते हैं। ये प्रियतम क्या है? प्रियतम क्या है? प्राण। प्राण से ज्यादा प्रिय कुछ में ही नहीं है, कि नहीं? सब कुछ छोड़ दे तो भी अपने प्राण को बचाता है कोई व्यक्ति, है ना? जैसे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का सब कुछ नष्ट हो गया, उसका सम्मान नष्ट हो गया है कि नहीं। धृतराष्ट्र का सम्मान नष्ट हो गया, उसका राज्य नष्ट हो गया, उसके पिता पुत्र भाई सब नष्ट हो गए और पुत्र भी मर गए, तो भी अपने प्राणों को धारण कर रहा है क्योंकि तो प्राण प्रियतम है। धृतराष्ट्र अपने प्राणों को पाल रहा है धृतराष्ट्र। अब वो कह रहे हैं विदुर जी कि जो काल है ये असज है, कि तुरंत ही अपने प्राणों से कोई व्यक्ति युक्त हो जाता है। तो जब तक कोई व्यक्ति देहात बुद्धि में है, देह को आत्म मान रहा है, तब तक उसको ये जो प्राण है ये सबसे ज्यादा प्रिय होता है। एक बार अकबर और बीरबल की बातचीत हुई, तो अकबर ने कहा बीरबल से कि बीरबल व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्यारी क्या चीज है। तो बीरबल ने कहा कि अपना जीवन, अपने प्राण। अकबर कहते नहीं बीरबल, माँ को अपना बेटा ज्यादा प्यारा होता है, माँ को अपना बेटा ज्यादा प्यारा होता है। तो बीरबल ने कहा कि जहां पना है माँ को अपना बेटा प्यारा होता है, जब तक उसके प्राण सुरक्षित हैं, और जब प्राण संकट में पड़ते हैं तो फिर बेटा प्यारा नहीं होता। अकबर का विचार था कि नहीं नहीं जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है तो फिर वो माँ को जो है मतलब प्राणों से ज्यादा प्यारा होता है। बिल्कुल छोटा बच्चा है, बाद में बड़ा हो जाए तो हो सकता है, बिल्कुल छोटा बच्चा है। तो एक प्रयोग किया गया, अकबर के महल की छत में जो है एक बंदरिया थी, छोटा सा बच्चा जो ना उसके गोद में था, उस खिला रही थी। तो प्रयोग किया कि भाई देखें कि बच्चा प्यारा है या अपने प्राण प्यारे हैं। तो वो पानी जो है ना भरा उस छत में, तो जब पानी भरा तो पानी जो है ना उसके गले तक आ गया, तो बच्चे को उसने और ऊपर उठा लिया, और ऊपर आए बच्चे को उसने अपने सिर के ऊपर उठा लिया, तो बच्चे की बड़ी देखभाल कर रही है। लेकिन जैसे पानी उसके नाक के ऊपर गया, अब वो डूब रही है, तो बच्चे को तुरंत नीचे डाल लिया और बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई है। अब बच्चा मरे उसको अपने प्राण बचाने, तो ये है। तो ऐसे कहने की कभी बातें होती हैं, कहने के लिए बातें होती हैं कि ये प्राण से ज्यादा प्यारा है। कोई बच्चे को कहता है, कोई स्त्री पुरुष को कहती है, पुरुष स्त्री को कहता है। लेकिन वास्तव में जब तक देहात बुद्धि है तब तक प्राण ही प्यारे हैं। अच्छा, लेकिन हाँ आत्मज्ञान के धरातल पर होता है, प्राणों से प्यारा होता है कोई व्यक्ति, जैसे सीता महारानी है ना, राम के बिना प्राण नहीं धारण करना चाहती है, प्राण से ज्यादा प्रिय है राम, मरने के लिए तैयार होते हैं कई बार राम के बिना। राम को सीता प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं, राम मरने के लिए तैयार रहते हैं। ये आत्मज्ञान के धरातल पर है, जब जानते हैं कि ये आत्मा नष्ट नहीं होती है, तो जो है व्यक्ति आत्मज्ञान के धरातल पर अपने शरीर को छोड़ने के लिए तैयार रहता है। तो ये आत्मज्ञान के धरातल पर प्रभुपाद जी को भी प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। राधा पार्वती जितने भी कृष्ण के मंदिर हैं, तो प्रभुपाद को प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। इसलिए कहते हैं प्रभुपाद प्राण धन है, हम लोग गाते हैं राधा पाद साथी प्रभुपाद प्राण धन है। तो प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं भगवान, भक्त को जो है प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। प्रभुपाद को चिंता थी कि उनके प्राण छूट जाएंगे लेकिन कृष्ण की पूजा बंद ना हो, प्रभुपाद को चिंता थी। किसी भक्त ने प्रभुपाद से लॉस एंजलिस में जब प्रभुपाद जी आए, तो भक्त ने बड़ी खुशी से प्रभुपाद को कहा, यह सोच करके प्रभुपाद बड़े प्रसन्न होंगे, और वैसे प्रसन्नता की बात थी, लेकिन प्रभुपाद जी प्रसन्न नहीं हुए। देखो कितना आश्चर्य, उस भक्त ने प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद जब आप आते हैं तो हमारी भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो और बढ़ जाती है। तो ये खुशी की बात है, है? ये प्रभुपाद जी दुखी हो गए, प्रभुपाद जी दुखी हो गए, क्यों क्यों दुखी हो गए प्रभुपाद जी? यही मेरी चिंता है कि जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम लोग कैसे पूजा करोगे इनकी। देखा प्रभुपाद को एक चिंता, प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं भगवान। तो आत्मज्ञान के धरातल पर जब तक कोई व्यक्ति आत्मज्ञान के धरातल पर ना हो तब तक कोई जो है ना प्रेम नहीं कर सकता वास्तव में। फिर काम है, काम ही है, प्रेम हो ही नहीं सकता। आत्मज्ञान के बिना प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जब तक प्राण सुरक्षित है तभी तक आप जो है ना दिखा सकते हो प्रेम। जहां अपने प्राणों को संकट आया तो वो जो प्रेम है वो समाप्त हो गया। हर कोई अपने प्राणों को बचाता है ना, तो प्राण से ही प्रेम हो सकता है और फिर जो है ना कोई व्यक्ति भक्तों से प्रेम कर सकता है। तो ये जो है प्रभुपाद जी कहते हैं मैं खुशी खुशी प्राण छोड़ रहा हूं, मेरे गुरु महाराज ने दुखी होकर के प्राण छोड़े थे और मैं खुशी खुशी प्राण छोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरे शिष्य लोग एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं, है ना। प्रभुपाद ने आदेश किया जीबीसी बनाओ तो जीबीसी बनी। इस प्रकार से जीबीसी ने प्रभुपाद की सब जिम्मेदारियां ले ली तो प्रभुपाद जी कहते मैं खुशी खुशी प्राण छोड़ रहा हूं। तो प्राण से भी ज्यादा ये प्यारा ये जो है आंदोलन है प्रभुपाद जी को। तो ये जो है अब एक परीक्षित महाराज ने भी प्रश्न किया श्रीमद् भागवत में एक विषय को लेकर के, और वो विषय ये था कि जब भगवान कृष्ण जितने भी बछड़े और बालक थे सब कृष्ण ही बन गए। जब कृष्ण अपना विस्तार कर लिया, ब्रह्मा जी ने चुरा लिए थे कृष्ण के बालक और सब बछड़े, तो कृष्ण अपना विस्तार कर लिया। तो अब जो गाय माता है वो इन बछड़ों पर ज्यादा स्नेह करते हैं जो कि बड़े हो चुके हैं, बचपन के और भी छोटे बच्चे पैदा हुए हैं, और उनको छोड़ करके इन बछड़ों को दूध पिलाते हैं जो घास चरते हैं। आप समझ रहे हैं, जो गौवे हैं उन बछड़ों को दूध पिलाते हैं जो घास चरते हैं। सोचो, और एक साल पहले भी घास चरते थे, जब घास चरता है बछड़ा तो गाय दूध पिलाती है, बछड़े को नहीं पिलाती। इन एक गौवे जो है एक साल तक जो है ना भगवान ने बछड़ों के रूप में लीला करी। तो ये गौ में जो है इनका प्रेम अब इन बछड़ों में बढ़ता जा रहा है, सोचो बढ़ता जा रहा है, ये कितना आश्चर्य है। और जो बछड़े नए पैदा हुए हैं उनसे प्रेम नहीं करते, उनको दूध नहीं पिलाती, इन बछड़ों को दूध पिलाती है। और जो माताएं हैं ब्रज की माताएं हैं वो भी इन बालकों से ज्यादा प्रेम करती हैं, जो पहले उनके बालक थे उनकी तुलना में इन बालकों से ज्यादा प्रेम करती हैं, जबकि नहीं जानती है कि ये कृष्ण है कौन है। और सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अपने बालकों में इतना ही प्रेम हो गया इन माताओं का जितना कृष्ण के प्रति था। मतलब पहले जब उनके बच्चे थे तो माताएं जो है अपने बच्चों से इतना प्रेम नहीं करती थी जितना कृष्ण से करती थी, है कि नहीं। तो परीक्षित महाराज को आश्चर्य हुआ कि ब्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं समझते, तो ये कैसे कि अपने बच्चों अपने मालकों की तुलना में कृष्ण से ज्यादा प्रेम करती हैं कि ब्रज की माताएं, ऐसा कैसे है। तो परीक्षित ने प्रश्न किया तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि वास्तव में हर कोई अपने प्राणों से ही प्रेम करता है सबसे ज्यादा। बालक अपने बच्चे है या पत्नी है या घर है या धन है उनसे तब तक प्रेम करता है जब तक अपने प्राणों को सुख देते हैं। ये आप समझ रहे, कोई व्यक्ति पत्नी घर और संपत्ति और धन बच्चे इन सबसे तब तक प्रेम करता है जब तक ये क्या करते हैं अपने प्राणों को सुख देते हैं। अपने प्राण तो अपने प्राण ही सबसे ज्यादा प्यारे हैं। और कृष्ण क्या है, कृष्ण प्राणों के प्राण है, कृष्ण प्राणों के प्राण है, क्योंकि ब्रजवासी बहुत शुद्ध आत्माएं हैं, उनका हृदय बहुत शुद्ध है, तो वो नहीं भी जानते तो भी कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं, क्योंकि बिल्कुल शुद्ध हैं, शुद्ध हृदय के हैं ब्रजवासी। लेकिन हमारा जो है ना कृष्ण के प्रति उतना प्रेम नहीं है, अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम है। कारण क्या है, हृदय अशुद्ध है। जैसे शुद्ध लोहा होता है तो चुंबक की तरफ खिंचता है, तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं ये ब्रजवासी, नहीं भी जानते हैं कृष्ण को।
तो भी आकर्षित होते हैं। तो कृष्ण प्राण जो भी प्राण है, तो ये जो है, अब जो प्राण है वो सबसे ज्यादा प्यारे हैं व्यक्ति को, किस आधार पर? प्रीतम, प्राण ही सबसे ज्यादा प्यारे हैं। इस आधार पर हाँ, बलि महाराज ने वामन देव को जो है अपना वचन पूरा किया। आप विचार करो, ये जो है ना, ये शास्त्र का कथन है कि हाँ भाई, हर व्यक्ति के लिए अपने प्राणों की कीमत सबसे ज्यादा, उसकी जितनी भी संपत्ति हो उससे ज्यादा कीमती क्या है? अपना जीवन है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्राण है प्रियतम, ये शास्त्र का देश है। हर व्यक्ति को जो देहधारी है उसके लिए प्राण सबसे ज्यादा प्यारे हैं। तो जब बलि महाराज ने वामन भगवान को वचन दिया तीन पर्व भूमि देने का, तो वामन भगवान ने तो बड़ा रूप धारण करके और दो पग में ही तीनों लोक नाप लिए। तो अब समस्या हुई बलि महाराज के लिए कि अब वो वचन कैसे पूरा करें, अब तीसरे पग के लिए जमीन कहाँ से लाएं? पहले तो उन्हें जरा सा काम लग रहा था, वामन देव छोटे थे और तीन पग भूमि मांगी तो बड़े दुखी थे कि इतना थोड़ा दान मांगा, मेरी बेइज्जती कर रहा है। लेकिन जब भगवान ने अपना विश्व रूप बना करके और दो पग में ही तीनों लोग नाप लिए, तब समस्या हुई और बलि महाराज को अपना वचन पूरा करना है। तो इस आधार पर कि हर व्यक्ति को जो अपना जीवन है, अपना शरीर है, वो सबसे ज्यादा कीमती है, उसकी चाहे जितनी भी संपत्ति हो, किसी करोड़ों करोड़ों की संपत्ति हो तो भी उसका अपना जीवन सबसे ज्यादा कीमती है। तो दो पग में अगर बलि महाराज की पूरी संपत्ति तीनों लोग अगर ले लिए भगवान ने, तो एक पग में बलि महाराज अगर अपना जीवन दे रहे हैं भगवान को, अपना शरीर दे रहे हैं, तो कम थोड़ी है, क्यों कम है? ज्यादा है, फिर दो पग से भी ज्यादा है। और एक पग में दे रहे हैं तो बलि महाराज ने क्या कहा? मैंने अपना वचन पूरा किया। बलि महाराज बड़े गौरव के साथ कहते हैं भगवान से कि मैंने अपना वचन पूरा किया। शास्त्र के अनुसार अपना जो जीवन है, अपना जो शरीर है, हर कोई सब कुछ, अपना धन संपत्ति सब, पत्नी बच्चे सब उसके चले जाए, तो भी अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है, क्योंकि प्राण सबसे ज्यादा कीमती है। तो बलि महाराज ने जो है अपना वचन पूरा किया, है ना। तो ये चीज जो है, मतलब हमने चर्चा की अभी प्राणों की। अब काल, जो काल शक्ति है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, प्रभुपाद जी ये पुस्तक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, इसमें प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह भगवान के साथ अपनी वास्तविक स्थिति को समझे और फिर उस संबंध के अनुसार कार्य करे। यदि ऐसा संभव हो जाए तो हमारा जीवन सफल है। किंतु कभी कभी हम चुनौती देते हुए कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, अथवा मैं भगवान हूँ, या मैं भगवान की परवाह नहीं करता, परंतु ये चुनौती पूर्ण भाव वास्तव में हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। भगवान है और प्रत्येक पल हम उनको देख सकते हैं। सुनिए ध्यान से, प्रभुपाद क्या कहते हैं। यदि हम अपने जीवन में भगवान को देखना अस्वीकार कर दें, हम नहीं देखना चाहते, वो क्या कहते हैं भगवान है ही नहीं, तो वे हमारे सामने क्रूर मृत्यु के रूप में उपस्थित रहेंगे। क्रूर काल, काल या मृत्यु के रूप में उपस्थित रहेंगे। हम उनको यदि एक रूप में नहीं देखते तो हम उनको दूसरे रूप में देखेंगे। एक तो भगवान का ये रूप है, बहुत प्यारा रूप है भगवान का, आप इनसे प्यार करो, ये कभी निराश नहीं करते हैं। जिस तरह से चाहो उनको अपना पुत्र बना लो, अपना मित्र बना लो, और अपना स्वामी बना लो, अपना पिता बना लो, वो जो है ना निराश नहीं करेंगे आपको हर प्रकार से। आप कोई संबंध उनसे नहीं जोड़ना चाहते तो फिर उनका भयानक रूप है, उसे संबंध जोड़ना पड़ेगा। और वो क्या है? मृत्यु के रूप में सब कुछ छीन लेंगे, है ना। अच्छा ही खुशी खुशी उनको दे दो, सब कुछ अर्पित कर दो। ऐसे भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं क्या है, जो किसु मोर मानस देह है, ये है जो किसु मोरा अर्पिलु तुव पदे नंद किशोरा। अगर खुशी खुशियां कर दे दो, अर्पित कर दो, कि आपका जो है हाँ माना जाएगा कि हाँ आपने दिया, और नहीं तो वो छीन नहीं, उस समय दिया हुआ नहीं माना जाएगा। उस समय आप नहीं कह सकते नहीं नहीं आप दे दिया मैंने, वो देना नहीं माना जाएगा, वो अर्पण नहीं माना जाएगा, वो छीन लेंगे, मृत्यु सर्वहरस्ता। तो प्रभुपाद लिखते हैं क्रूर मृत्यु के रूप में उपस्थित रहेंगे, यदि हम उनको एक रूप में नहीं देखते तो हम उनको दूसरे रूप में देखेंगे। भगवान के विविध रूप हैं, ये समस्त ब्रह्मांड के अधिकार हैं, एक दृष्टि से उनसे बच पाना हमारे लिए संभव ही नहीं है, बच नहीं सकते। अब जो असुर लोग हैं ये भगवान को काल के ही रूप में मानते हैं, असुरों का जो सिद्धांत है वो भी उनके पास काफी आध्यात्मिक ज्ञान देता है, असुरों के पास ही आध्यात्मिक ज्ञान देता है, हिरण्यकश्यप के पास भी काफी आध्यात्मिक ज्ञान था, उस ज्ञान के द्वारा वो शोक दूर करते हैं, असुरों की भी गीता की टीका भी है, और सभी सुख दुख में समान होना बहुत अच्छी टीका लिखे व्याख्या करते हैं, सुख दुख में समान होता है व्यक्ति, उद्विग्न नहीं होता है ना, लेकिन वो किस तरह से काल को ही मानते हैं कि भाई काल के द्वारा जो है ना ये सब कुछ होता है, काल जो कि निराकार एक शक्ति है उसके द्वारा होता है, तो उसको जो है ना वो जो है सबसे बड़ा नियंता मानते हैं। जो भक्त हैं वो कहते हैं कृष्ण की इच्छा से हुआ, कृष्ण की इच्छा, तो उनकी भाषा होती है काल के द्वारा। जैसे कि हिरण्यकशिपु ने जब तपस्या की तो क्या कहता है, इस ब्रह्मांड में परम पुरुष ब्रह्मा जी ने अपना उच्च पद कठिन तपस्या योग शक्ति और समाधि द्वारा प्राप्त किया है। मतलब कोई भगवान नहीं है कि उनको प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने तपस्या की, जैसा शास्त्र में है, अपनी तपस्या से प्राप्त कर लिया, असुर है तपस्या करते हैं, अपनी तपस्या से मैं प्राप्त कर लूंगा, मतलब किसी को। तो हिरण्यकश्यपु ने क्या कहा कि इस ब्रह्मांड में परम पुरुष ब्रह्मा जी ने अपना उच्च पद कठिन तपस्या योग शक्ति और समाधि द्वारा प्राप्त किया, मतलब कोई भोक्ता नहीं है, जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि मैं यज्ञ तपस्या का भोक्ता मैं हूँ, और भगवान की प्रसन्नता से फिर यज्ञ तपस्या का फल प्राप्त होता है। हिरण्यकश्यपु क्या कहता है, ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या से प्राप्त किया क्या ब्रह्मा का फल, फलस्वरूप इस ब्रह्मांड में सृष्टि करने के बाद ये सर्वाधिक पूज्य देवता बन गए, इसमें भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, ना भगवान का कोई हाथ है, ब्रह्मा जी अपनी तपस्या से बन गए, ठीक है, असुरों का सिद्धांत। हाँ अतएव मैं भी ऐसी तपस्या करूंगा क्योंकि मैं शाश्वत हूँ और काल शाश्वत है, कोई भगवान नहीं, मैं शाश्वत हूँ और काल शाश्वत है, अतएव मैं भी ऐसी ही तपस्या योग शक्ति और समाधि के लिए अनेक जन्मों तक प्रयास करूंगा और वो स्थान ग्रहण करूंगा जो ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया है। तो काल को मानते हैं असुर लोग जो है, काल को मानते हैं, एक जो निराकार शक्ति है वो शाश्वत है, मैं शाश्वत हूँ और मैं भगवान बन जाऊंगा इसके द्वारा, है ना, इस तरह से जो है असुर लोग सोचते हैं। और शिशुपाल जब रुक्मिणी का हरण हो गया और जरासंध जितने राजा थे शिशुपाल की सहायता नहीं कर सके, कृष्ण से पराजित हुए, तो उस समय जो है अब जरासंध ने शिशुपाल को समझाया कि कैसे शोक को दूर किया जाए, उनके पास अध्यात्म ज्ञान जो होता है वो कैसा होता है, वो भगवान नहीं कहते कि भगवान के द्वारा ये हुआ है तो भगवान की इच्छा मान लो, भक्त कहता है भगवान की इच्छा है तो वो जना अपना शोक दूर कर देता है भगवान की इच्छा मांग करके, उनके इच्छा में समर्पित हो जाता है। लेकिन जो अभक्त है वो काल को मानता है, काल को, पूरी गीता की व्याख्या वो इस तरह से करते हैं, ईश्वर काल देव वही जो निराकार है, तो क्या कहते हैं, हे पुरुषों में व्याज शिशुपाल, शिशुपाल बहुत दुखी है, बहुत निराश है, क्यों, क्योंकि रुक्मिणी नहीं मिली है, उसको रुक्मिणी नहीं मिली और कृष्ण ले गए रुक्मिणी को, तो बहुत ना, हे पुरुषों में व्याज शिशुपाल सुनो, तुम अपनी उदासी छोड़ दो, हे राजन सारे देहधारियों का सुख और दुख कभी भी स्थायी नहीं देखा जाता। क्या कहता है जरा समझता है, जिस तरह स्त्री के देश में एक कठपुतली अपने नचाने वाले की इच्छा अनुसार नाचती है, उसी तरह काल द्वारा नियंत्रित ये जगत सुख और दुख दोनों से संघर्ष करता है। काल से सब जितने जीव है कठपुतली, जो भक्त है वो कृष्ण का नाम लेता है कि कृष्ण के हाथ में सब कठपुतली है, वो कहते हैं काल के द्वारा। यथा दारू मई योशन नृत्य के एवं ईश्वर तंतोयम ईहते सुख दुख, ईश्वर या काल या देव ये सब उनके होते हैं। फिर क्या कहते हैं जरासन कि देखो मैं भी उदास नहीं होता हूँ, मैं भी निराश नहीं होता हूँ, कृष्ण के साथ में 23 अक्षोहिणी सेना सहित 17 बार हार चुका हूँ। जरासन कह रहा है कि ये बड़े आश्चर्य की घटना है, कृष्ण इतने कमजोर है, कृष्ण इतना कमजोर है और मैं इतना बलवान हूँ, और कृष्ण ने 23 अक्षोहिणी सेना के साथ मुझे 17 बार हराया लेकिन मैं निराश नहीं होता हूँ। केवल एक बार मैं कृष्ण को हरा पाया हूँ। सौरे सब दशा हम में संयोगानी पराजित हम सैन्य कम हम परम, तो भी मैं ना कभी शोक करता हूँ ना हर्षित होता हूँ, ना मुझे खुशी होती है ना मुझे कोई दुख होता है इन चीजों का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि संसार काल के द्वारा संचालित है, भाग्य के द्वारा काल के द्वारा। तथापि हम न सोचामि ना प्रहस्यामि करे चिन्ह काले न देव युक्ते न जानन विद्रावितम जगन। भक्तों की भाषा में क्या होती है, वो कहते हैं कृष्ण कृष्ण की इच्छा या श्री राम की इच्छा, क्या बोलते हैं भक्त लोग, जाही विद्धि राखे राम ताही विद्धि रहिए। तो वो भगवान का नाम लेंगे, व्यक्तिगत नाम लेते हैं भगवान का कि इनके इनके द्वारा जो है संचालित है सब घटना है। और जो असुर लोग हैं वो ईश्वर काल दैव ये बनाते हैं। फिर क्या कहता है जरासंध, और अब हम सभी सेना नायकों के बड़े बड़े सेनापति हार गए यदुओं के द्वारा, कृष्ण के द्वारा हार गए, जबकि कृष्ण में कोई शक्ति नहीं है और छोटी सी सेना थी यदुवंशियों की, उनके द्वारा हार गए, तो हम लोग नहीं शोक करते इस बात से। क्यों, ये समय बलवान है, समय जो ना कमजोर को बलवान बना देता है, बलवान को कमजोर बना देता है, तो समय के द्वारा होता है, असुर है इसलिए। तो कृष्ण के द्वारा सुरक्षित छोटी सी सेना ने हमको हरा दिया, हम इतने बड़े बड़े बलवान लोग हैं हम हार गए, तो इसमें शोक करने की जरूरत नहीं है, ये काल का फेर है, काल का फेर है। अधुना वयम सर्वे वीर तप यूथपा पराजिता फल्गु तंत्र यदवे कृष्ण पालित। अभी हमारे शत्रुओं ने हमको जीत लिया है क्योंकि काल ने उनका साथ दिया है, तो उनकी अपनी शक्ति थोड़ी है कि काल ने उनका साथ दिया है, किंतु भविष्य में जब हमारी भी काल शुभ होगा तो हम जीत लेंगे काल के बाद। देखो वो जिज्ञू अधुना काल आत्मानुसारिणी सदा वयम विजेश्यामो यदा काल प्रदक्षिणा। तो ये असुरों की भाषा है, जैसे बलि महाराज भी जब असुरों को समझाते हैं, जब वामन देव ने अपना विश्व धारण किया और हाँ बलि की पूरी संपत्ति थी, तो असुर लोग है ना बहुत दुखी हुए और बहुत गुस्सा भी हुए, और असुर लोग कहते हैं कि हम वामन देव को मार डालेंगे। तो ये हमारे महाराज हैं, यज्ञ में दीक्षित हैं, तो वो तो युद्ध कर नहीं सकते हैं, और उनकी जो है ना इस कमजोरी का फायदा उठा करके ये वामन जो है हमारे साथ में गड़बड़ कर रहा है, तो इस वामन देव को हम मार डालेंगे। अस्त्र लोग जो है अपने तो अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए, तो बलि महाराज उनको भी समझाते हैं, तो असुरों की भाषा में समझाते हैं। बलि महाराज महान भक्त हैं या जो भी हो, बाद में भक्त बने जो भी हो, या असुरों से तो असुरों की भाषा में ही बोल रहे हैं बलि महाराज। और क्या कहते हैं कि देखो हम लोग इतने बलवान हैं लेकिन ये काल का जो है ना ये फेर है, काल का परिवर्तन है कि अभी जो है हमारा चला गया, आगे चलकर काल जब जो है अनुकूल होगा तो हम लोग जो है शत्रुओं को जीत लेंगे। तो बलि महाराज असुरों से असुरों की ही बातें करते हैं। इस प्रकार से हमने कुछ चर्चा की है, आपके लिए कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है, समीक्षा। तो जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ,
इस श्लोक में बताया गया है प्राणे प्रिय तमे रति, प्राण ही सबसे ज्यादा प्रिय है व्यक्ति के ऊपर। तो इसका हमने क्या उदाहरण दिया था कि कैसे हम समझें कि प्राण ही सबसे प्यारे हैं। तो एक उदाहरण बंदरिये का दिया, क्या था वो, जब पानी नाक के ऊपर आ गया तो बच्चे को उसने नीचे डाल दिया, उसके ऊपर खड़ी होकर के सांस लेने लगे, है ना, ये है। लेकिन फिर प्राणों से भी ज्यादा प्रिय कोई व्यक्ति हो सकता है, कैसी स्थिति में, वो कौन सी स्थिति है जब प्राणों से भी ज्यादा प्रिय कोई हो सकता है, जब हम आत्मज्ञान के धरातल पर होते हैं। इसका उदाहरण, आत्मज्ञान के धरातल पर कोई व्यक्ति प्राणों से ज्यादा प्यार करता है किसी से, प्रभुपाद जी, हाँ प्रभुपाद जी प्यार करते हैं भगवान कृष्ण से। इसका उदाहरण, उन भक्तों ने आशा की थी कि प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे, तो उन भक्तों ने क्या कहा, प्रभुपाद से आप जब आते हैं तो हमारे भगवान के द्वितीय जन स्त्री विग्रह की सेवा के प्रति, पूजा के प्रति श्रद्धा बहुत बढ़ जाती है। तो प्रभुपाद प्रसन्न होने के स्थान पर दुखी हुए, क्यों दुखी हुए, हाँ यही मेरी चिंता है प्रभुपाद के, यही मेरी चिंता है। भक्त लोग सोचते हैं कि प्रभुपाद को इस बात का बहुत सुख होगा कि मेरे आने से भक्तों की जो ना जो श्रद्धा है वो बढ़ जाती है भगवान के प्रति, उनके दर्शन में, उनकी सेवा में, उनकी पूजा में, और प्रभुपाद को इस बात का दुख हो रहा है, यही मेरी चिंता है। देखा, प्रभुपाद जैसे कोई हो नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता है कि प्रभुपाद की ये चिंता है। प्रभुपाद की यही मेरी चिंता है कि मेरे जाने के बाद तुम लोगों का फिर क्या होगा। और प्रभुपाद ने अंतकाल में भी भगवान से मांगा है, जो फाइनल पेस्टाइम्स ऑफ प्रभुपाद, जो तमाल कृष्ण महाराज का लिखा हुआ ड्रामा है, तो उसमें प्रभुपाद ने यही मांगा भगवान से कि आपके जो है, मैंने जितने मंदिर स्थापित किए हैं उनमें जहाँ आपकी जो सेवा है, पूजा है, वो चलती रहे, उसी प्रकार का जो है ना स्तर रहे आपकी सेवा का, पूजा का, जिस तरह से मैंने स्थापित किया है। इसलिए क्या कहते हैं भगवान के श्री विग्रह को, श्रील प्रभुपाद प्राण धन हे, प्राण धन हे। अब प्राण ही सबसे प्यारे हैं, इसी आधार पर बलि महाराज ने भगवान वामन देव से ये कहने का साहस किया कि मैंने आपके तीन पग पूरे कर दिए, क्योंकि जिस संपत्ति को आपने दो पगों में नापा था उससे अधिक संपत्ति मेरा शरीर है, जिसे मैं आपके एक पग के बदले में दे रहा हूँ। मोहन रूपा ने अच्छा ये जो है याद दिलाया, इस शास्त्रक्रम का अंतिम श्लोक हम लोग रोज पढ़ते हैं लेकिन विचार नहीं करते हैं, अंतिम श्लोक। और अंतिम श्लोक हम जो हो कि आत्मज्ञान के जो है धरातल पर है अंतिम श्लोक, जिसमें कि वो कहते हैं आशीष सेवा पादरताम तनसमाम अदर्शनान मर्म हताम करो सुबह यथा तथा वामिर धातु लंपटो मत प्राण नाथ शरीर ना बरा, मेरे प्राणों के नाथ वही हैं, चाहे वो जैसे भी मेरे साथ व्यवहार करें, चाहे कोमल व्यवहार करें चाहे कठोर व्यवहार करें, मेरे प्राण नाथ वही हैं। तो ये जो स्थिति है ये भगवान के साथ ही हो सकती है, और किसी के साथ क्यों नहीं हो सकती है, जो प्राणों से ज्यादा प्रिय जो भगवान लगते हैं, तो ये बात है ना, और किसी के साथ इस भौतिक संसार में और किसी के साथ क्यों नहीं हो सकती। जब तक देहान बुद्धि है तब तक आप प्रेम कर नहीं सकते, जितना प्रेम है वो सब काम है। हाँ जी, मैं तो उनका प्रश्न है प्राण चेतना आत्मा इनमें क्या अंतर है। प्राण का मतलब यहाँ पर है जीवन, ये शरीर। तो और चेतना, चेतना होती है जो जीव की एक शक्ति है चेतना, जैसे कि सूर्य से प्रकाश निकल रहा है ना, तो उसी प्रकाश से आत्मा की जो है ना एक शक्ति है चेतना, जो कि पूरे शरीर में फैली हुई है। और ये चेतना जो है शुद्ध होती है, आत्मा तो शुद्ध है, चेतना भी शुद्ध होती है, लेकिन जब आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आती है ये जीवात्मा, तो उसकी चेतना उसी प्रकार अशुद्ध हो जाती है, जैसे कि वर्षा की बूंद
जब आकाश से गिरते तो शुद्ध होती है, और जैसे ही जमीन में गिरी वो क्या हो गई, गंदी हो गई। अब इसको साफ करना बहुत मुश्किल है, है कि नहीं? वर्षा की बूंद को अगर आप किसी बर्तन में आप ले लो तो आपको बिल्कुल शुद्ध पानी मिलेगा, लेकिन जैसे मिट्टी में जमीन में गिर गई अब आप उसको शुद्ध आसानी से नहीं कर सकते, है ना? उसी प्रकार से चेतना दूषित हो जाती है बड़ी आसानी से, जैसे भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है जीवात्मा उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है। अब शुद्ध करना बहुत मुश्किल है, जो वर्षा का पानी जो जमीन में गिर गया उसको आप शुद्ध कैसे करोगे, कैसे करोगे? आसवन, आसवन की विधि से, डिस्टिलेशन। तो हमने पढ़ा था कक्षा 7 में डिस्टिलेशन की विधि, कि एक बर्तन में ले लेते हैं और फिर उसकी भाप को जो ठंडा करते हैं फिर वो जो है बिल्कुल शुद्ध पानी होता है। तो अब इसमें बहुत मुश्किल, दोषित होना बहुत आसान है, जैसे गिरे पतित जीव पतित हुआ उसकी चेतना शुद्ध हो गई। अब उसको शुद्ध करने के लिए इसको गर्म करना है, उबालना है और फिर ठंडा करना है कि नहीं? तो ये भक्तियों की जो विधि है वो है आसवन की विधि, जिसमें कि आपको शीघ्र तपस्या करनी है, नियमों का पालन करना है, है ना? और तब जो है ना आप इस चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जलंधरा श्रीमद भागवतम की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौणदाय भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।